श्री वर्धमान महान जिन विचरे हमारे प्रवचन सार परमागम चल रहा है और उसकी गाथा नंबर 33 पर अपन ने चर्चा की थी और जिसमें ये कहा गया था कि जैसे केवली हैं वो स्वयं को जानते हैं तो निश्चय से स्वयं को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं, ऐसे ही शुद्ध केवली भी निश्चय से स्वयं को जानते हैं और व्यवहार से पर को जानते हैं। अभी इसमें ऐसा लगता है कि जैसे केवली बहुत सक्रिय हैं, कभी यहां ये जानते हैं वो जानते हैं भाई भाई कहते हैं, तो उनको उल्टी तरफ से कहते हैं कि जो पर पदार्थ ज्ञान में ज्ञात होते हैं, है ना, तो केवली का पर पदार्थों को जानना तो पर पदार्थ उसके ज्ञान में आना इसका नाम व्यवहार है और अपना आत्मा ज्ञान में आना इसका नाम निश्चय है। बस इतना फर्क है। आपको लगता है कि नमन क्या फर्क पड़ा? देखो, राम ने रावण को मारा, एक वाक्य है हिंदी का छोटा सा जो आपने दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा होगा, इसमें राम करता है और रावण कर्म है, मारा गया ना रावण, और मारना क्रिया है। अभी और बढ़ाते जाएं अपन चाहें तो अपन ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने धनुष बाण से मारा तो कर्ण को बढ़ा दिया, फिर कहते हैं सीता को वापस करने के लिए मारा तो हम उसने संबलान बढ़ा दिए, ऐसे बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन सबसे छोटा वाक्य बनाए तो तीन चीजें तो जरूरत है, एक कर्ता और एक कर्म और एक क्रिया। तो संस्कृत भाषा में, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, इसे मतलब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, एक ही बात को दो तरह से कहने की पद्धति है। राम ने रावण को मारा एक कर्तृवाच्य है और रावण राम के द्वारा मारा गया ये कर्मवाच्य है, ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें फर्क क्या पड़ा? मरने को तो बेचारा रावण ही है। अपन कहते हैं चाहे कद्दू पर हाशिया मारो, चाहे हाशिए पर कद्दू मारो, कटना तो कद्दू को ही है, हाशिया तो कटने वाला है। तो रावण तो वो कहते कि नहीं, बहुत फर्क है। इसमें ये दिखता है कि राम हत्यारे हैं, तो राम ने मारा ना, तो मारने वाले को तो हत्यारा कहते हैं, घबराना नहीं। ये तो अपन हिंदी का वाक्य समझा रहा है, राम को तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो तुम और नाम ले लो, श्याम ले लो, श्याम भी पसंद नहीं आए तो और ले लो कुछ भी नाम। मतलब यहां तो सिर्फ नाम को समझा रहा है, राम को कोई हत्यारा सिद्ध करना कुछ हमारा काम नहीं है। तो राम पे अपराध आता है और जब कहते हैं रावण राम के द्वारा मारा गया तो सारा अपराध रावण पे चला जाता है। उनने तो बहुत कोशिश करी समझाया कि हमारी सीता वापस दे दे और तो हमें कुछ नहीं चाहिए तेरा, हम वापस चले जाएंगे, लेकिन वो नहीं माना, आखिरकार राम के हाथ से मारा गया। तो इसमें अपराधी वो रावण ही दिख रहा, वो ही मरे और वो ही अपराधी, समझ में ना। तो अपन को लोक में मालूम पड़ता नहीं, राम रावण को छोड़ दो, अब अपन आपस में बात करो कि देखो यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई मत समझना, कहते ना कि तुमसे बुरा वैसे है कौन। मैंने कहने का ऐसा ये है कि इस तरह का निरंतर चलता रहता है। तो अभी यहां ये कहा कि सारे पदार्थ ज्ञान ने जाने, तब जानना कोई अपराध तो है नहीं। तो अभी ज्ञान बोझा गया कि अब उसे हमेशा जानना पड़ेगा, आज जाने तो कल जानना पड़ेगा, परसों जानना पड़ेगा, नरसों जानना पड़ेगा, क्यों है समझे ना। तो माथा पे बोझा दिखता है, तो उसको ये बताने के लिए कि तुम ज्ञान के विरोधी नहीं हो जाओ, इस डर के मारे के मेरे माथे माथा बोझा ना आ जाए, तुम जानने से ही घबराने लगो, जानने के स्वभाव से ही इनकार करने लगो। तो वो कहते हैं ये सारा जगत आपके ज्ञान में आ गया, आपने क्या किया। तो कर्तृत्व के बोझ से वो बच गया। तो कर्तृत्व के बोझ से क्यों बच गया, तो भाषा की दृष्टि से देखो अशोक बाबू, कि जब कर्ता नहीं रहा वो, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में राम कर्ता है ना, राम कर्ता कर्म करण में है ना, राम कर्ता है कि नहीं, और अब फिर राम के द्वारा मारा गया तो कर्ता नहीं रहा ना, आप समझिए ना, तो कर्तृत्व उसके माथे से उतर गया। तो हमें अपने कर्तृत्व का बोझा उतारना है, और वो कर्तृत्व का बोझा तब उतरेगा जब हम एक ज्ञान का स्वरूप समझेंगे। कि कहते तो ऐसे ही है कि ज्ञान ने जाना, लेकिन ज्ञान ने कुछ नहीं किया। अपन लोग बोलते ना, कल तो कितना बोला होगा आप सबने, गुरुदेव के प्रताप से, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव ने गांव गांव में घर घर में समय साल पहुंचा दिया, क्यों बोलते कि नहीं बोलते हैं इस पंचम काल में, और आज भी 30-35 वर्ष उनके स्वर्गवास को हो गए, फिर भी उनका काम चालू है, ऐसा बोलते नहीं बोलते उनके कर्तृत्व में, और हम गौरव समझते हैं। अब उसमें क्या, आज क्या चालू है उनका, कैसा पंडित जी क्या बात करता है, ये गांव गांव में मंदिर बन रहे तो भी बना रहे, उनने प्रेरणा दी, उनकी छत्र छाया में वे क्या छत्र छाया दे रहे, ऐसे नए नए वाक्य हम खोज खोज के किसी तरीके उनके माथे मरे। अब ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई अपराध हो, कर्तृत्व बुद्धि तो अपराध है ही, क्यों मिथ्यात्व का अपराध है कर्तृत्व बुद्धि तो, हमारे कर्तापन का व्यवहार है कि नहीं है बोलिए, उनने कभी प्रेस में जाकर के देखा नहीं समय साहब, कभी एक हाथ से उठाया नहीं, वो ही उठाया होगा जिसपे वो पढ़ते थे, क्यों, और दौड़ दौड़ के छोटे बाबू भाई ये सब जाके गांव गांव में घर घर में दे आए, और फिर कहीं पूज गुरुदेव सिंह ने घर घर में समय साहब पहुंचाया, और छोटे बाबू भाई का कोई नाम नहीं, होता है सारे जगत में। हम 5 साल पढ़ा रहे हैं, एक एक शब्द हमने सिखाया है, जब आए थे हमारे पास तो काला अक्षर भैंस बराबर था धर्म के मामले में, नवोकार मंत्र भी शुद्ध नहीं पढ़ सकते थे, प्रशिक्षण शिविर में हमने पढ़ाया था कि नहीं नवोकार मंत्र ऐसे नहीं ऐसे बोलो, क्यों, और फिर गए आप ही, हाँ गांधी स्वामी के शिष्य है, हमारा नाम ही नहीं देता। और देखो हमको उसमें खुशी होती है, क्यों हमको खुशी होती है, अरे भाई उसमें क्या है, कल जो हमारे विद्यार्थी गांव गांव में काम करेंगे समझे ना, वो इनका कोई नाम नहीं लेगा, फिर हमारा नाम लेगा जब हम कर रहे हैं तो गुरुदेव का नाम लेता है, हमें भी करने में सुविधा रहती है गुरुदेव के नाम से, तो ये हमारा नाम लेंगे फिर इनके विद्यार्थी होंगे, इसी तरह से ये परंपरा चली आई, क्यों भगवान महावीर से लेकर आज तक हमारे पास है, आचार्य देव ने लिखा हमारे गुरु पर्यंत, लिखा करने लिखा केवली भगवान से चली आई ये परंपरा हमारे गुरु पर्यंत, तो ऐसे व्यवहार कथन का नियम है, वो ये कह रहे कि ऐसे ही ये जो प्रकरण ऐसे समझना कि आत्मा जानता है, क्योंकि ज्ञान से जानता है, तो ज्ञान और आत्मा तो एक ही है, इसे दो भेद डालने से क्या फायदा, आत्मा जानता है कहो और चाहे आत्मा ज्ञान से जानता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ रहे ना, तो आत्मा जानता है इतना ही रहने दो, एक कर्ता एक क्रिया, जानना क्रिया और आत्मा करता। बात तो पूरी हो गई, वाक्य तो पूरा हो गया, अब किसको किसको? तो उत्तर आया सबको। क्या कि सबको? सबको किस किस को? कि स्व को और पर को, लोक को और अलोक को, जीव द्रव्यों को और अजीव द्रव्यों को। कई तरीके से हम दो दो भेद करके कह सकते हैं ना कि किन को जानता है किन को नहीं जानता है। तो वो कहते जानना काम काम है, वो उसमें अपने को जानना हो तो उसको निश्चय कहते हैं, और पर का जानना हो वो व्यवहार कहलाता है। काम तो सिर्फ जानना है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब तुमने अपने पराये का भेद डाला है? तो उसमें निश्चय जानने में अपनापन जोड़ा तो निश्चय हुआ वो, और परायापन जोड़ा तो व्यवहार हुआ। जानने में तो निश्चय व्यवहार कुछ था ही नहीं, मैं जानना था क्या? अपने लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान से जानता है, तो अब केवल ज्ञान से जानता है किसको? अपने को जानता है सो निश्चय, और पर को जानता है सो केवल ज्ञान में व्यवहार। अब वास्तव में तो केवल ही भगवान के निश्चय व्यवहार होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये नए जो है ना निश्चय व्यवहार, ये श्रुति ज्ञान के भेद हैं, ये केवल ज्ञान के भेद नहीं है। और केवल ज्ञानी के श्रुति ज्ञान ही नहीं है, वही खत्म हो गया, इसलिए उनमें नए लग नहीं सकते। वे कोई निश्चय से अपने को जानते हो और व्यवहार से पर को, ऐसा है ही नहीं। उनने तो कोई भेद किया ही नहीं, उनके ज्ञान में तो दोनों एक साथ झलक गए, और जो जैसा है वैसा झलक गया। जैसा है माना क्यों जी? जो स्व है वो स्व के रूप में झलक गया, जो पर है वो पर के रूप में झलक गया। ऐसा आपको होता नहीं है क्या? आपने अपनी जेब में से 10,000 रुपये निकाले तो साथ में आप ये नहीं जानते हो भाई 10,000 रुपये मेरे हैं, और कदाचित किसी दूसरे व्यक्ति ने आपको दिए हो और कह दिया कि ये फला व्यक्ति को दे देना, तो उस वक्त भी आप भी जेब में रहते हैं, तो आपने जानते हो कि नहीं? तो जब जब जानते हो तब तक ये भी जानते हो ना कि ये मेरे नहीं है, ये तो उसके हैं, तुम्हारे नहीं है। नहीं नहीं मेरे नहीं है, तो उसके हैं। तो इतना सामान काय को रहे हो कि कोई जेब ना काट ले? तुम्हारे तो नहीं है ना, काटेगा काट ले, पर के हैं वो, पर ही काटेगा। उसको उस पर से भेद विज्ञान करने से क्या फायदा है कि इस पर में के हैं और इस पर में काटा है, पर के पर में गए कि नहीं साहब मेरे माथे पे कलंक लग जाएगा, तेरे है नहीं, समझ लेना। जो लेकिन लोक में जो नैतिकता है ना व्यवहार की, वो नैतिकता का बोझा आपके माथे पर है कि भाई मैं तो ये झंझट चाहता हूं कि जे जिसका पास पहुंचाना है उसे पहुंचा दूं और मैं निर्भरी हो जाऊं। तो जब आपने उसे पर जाना तो तब उससे आप छूटना चाहते हैं ना, जितने जल्दी बरी होना चाहते हैं, और स्व जानोगे तो अनंत काल तक नहीं छूटना है। तो अब जिस पर पदार्थों से तुम चाहते हो गए जे उनका वियोग मेरे से हो गए ही नहीं, इसका मतलब तुम्हारी उसमें एकत्व बुद्धि है। तुम पर जानते तो छूटना चाहते होना चाहिए ना, परत्व बुद्धि हो जाती। जैसी आचार्य देव कहते हैं, अब इतना भेद पड़ता है कि श्रद्धा के लेवल पर और चारित्र के लेवल पर उसमें थोड़ा फर्क पड़ता है, उस चर्चा में मैं अभी विशेष नहीं जाता हूं। मैं तो आपको अभी केवली और श्रुत केवली की बात कर रहा हूं। वे क्या कह रहे हैं कि केवल ज्ञान ने अपने को जाना और श्रुत ज्ञान ने अपने में जाना, तो क्या फर्क है? दोनों ने अपने को जाना ना, इसलिए दोनों निश्चय है। एक खाते में दोनों में डाल दिया, हमने केवली पे भी निश्चय व्यवहार लगा दिया। ये कहां लगाया है राजन जी? अपने ज्ञान में लगाया है, केवली के ज्ञान में तो लगता ही नहीं, केवल ज्ञान में तो नए लगता ही नहीं। हमारा ज्ञान नए ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, तो हमने अपने ज्ञान में केवली को गे रूप रख करके लगाया है कि केवली हम उन्हें भी जानते हैं और वे क्या जानते हैं हम ये भी जानते हैं, और वे अपने को जानते हैं ये जानते हैं, और उनका अपने को जानना निश्चय नए है ये भी जानते हैं, वे पर को जानते हैं और उनका पर को जानना व्यवहार नए है ये भी जानते हैं। ऐसी बात है, अज्ञान सम्यक हो गया। अब यहां तो इस गाथा में जो अपन आगे बढ़ने वाले हैं उस गाथा में ये कहने वाले हैं कि भैया कोई फर्क नहीं है, चाहे केवली ने जाना चाहे शुद्ध केवली ने जाना। वो कहते इतना ही तो है कि वो उसमें श्रुत की उपाधि लग रही, इसमें ऐसा शब्द पड़ा है कि श्रुत कृत उपाधि की उपेक्षा कर दें है? है ना, मैं पढ़ के सुनाऊं कि श्रुत कृत उपाधि की हम ऐसी उपेक्षा कर सकें तो क्या है? दोनों ज्ञानी ज्ञान तो है, ज्ञानी ज्ञान में क्या फर्क है? दोनों ज्ञान है, कुछ फर्क नहीं है। वो कहते हैं देखो श्रुतिकृति उपाधि की उपेक्षा कर दें। प्रथम तो दो पेज नंबर बताओ 372। प्रथम तो श्रुति ही सूत्र है और वह सूत्र भगवान अरहंत सर्वज्ञ द्वारा स्वयं जानकर उपदिष्ट साक्षात्कार चिन्ह युक्त औद्गलिक शब्द ब्रह्म है। उस शब्द के को भी ब्रह्म लगा लिया, ब्रह्म माने आत्मा और आत्मा के प्रतिपादक शब्दों को बोलते हैं शब्द ब्रह्म। क्या बोलते हैं, कहीं पढ़ा आपने? कोई नहीं। हाँ, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म जिनवान, शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ जुगपान। ये देवसाज गुरु को इस रूप में याद किया, शुद्धात्मा तो सच्चा देव है ना, और शब्द ब्रह्म जिनवाणी, ब्रह्म माने आत्मा के वाचक जो शब्द हैं वो जिनवाणी है, और आत्मा की साधना करने वाली जो अवस्था है वो गुरु है। ऐसे देवसाज गुरु को याद आ गया, शब्द ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म ब्रह्मान, शुद्धात्म साधक दशा नमो जोड़ जुगपान। ये पूजा मैंने सन 56 में लिखी थी, 56 समझते हैं 56, अब आजकल ऐसे जमाना आ गया। ये हमको 56 का अर्थ भी अंग्रेजी में समझाना पड़ता है 56। इस सच्ची घटना सुनाता हूं मैं, मेरा पोता मेरे पास आया और उसने कहा दादाजी आपकी उम्र क्या है? तो मैंने कहा 64। ये तब की घटना है जब मैं 64 साल का था, सच्ची घटना है। अब 80 का कितने साल पुरानी हो गई, 16 साल पुरानी। तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, दौड़े दौड़े अपने पापा के पास गया कि पापा पापा 64 क्या होते हैं? जब उन्हें समझाया 64, तब उसकी समझ में आया जमाना कितनी तेजी से भाग रहा है कि हमें अपने पोते को भी हम क्यों 64 समझ में नहीं आता, क्या करें? वो भी हमको 64 में समझाना पड़ता है, है? इस शब्द ब्रह्म क्या करेगा है? लेकिन मैंने तो 56 माने 21 वर्ष की उम्र में वो पूजा लिखी थी और उसने इन शब्दों का प्रयोग किया था, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा और शब्द ब्रह्म जिनवान, शुद्धातम साधक दशा जोर जुगपान। इसी की लेन पे दर्शन दाता देव है आगम सम्यक ज्ञान, गुरु चरित्र की खानी है मैं बंधु धर ध्यान। दोनों एक चीज है। देखो इसमें कहते सूत्र, उस सूत्र का ज्ञान वो श्रुत ज्ञान है। अब ये श्रुत ज्ञान शब्द की बहुत व्याख्याएं हैं, एक तो मति व श्रुत होते हैं ना, तो वो जो श्रुत ज्ञान है, एक तो वो श्रुत ज्ञान है, और एक जो सुनकर ज्ञान होता है उसे भी श्रुत ज्ञान बोलते हैं। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर हमको हुआ ना आगम ज्ञान, उसे श्रुत ज्ञान बोलते हैं। हालांकि हमने तो पढ़ के किया, क्यों हम जब नहीं थे जब उनने बोला था, लेकिन जिनने सुना था उनने लिख दिया और उसे हमने पढ़ लिया, दो तीन आड़तें लग गई क्यों, लेकिन आ गया वो हमारे पास वैसा ही का वैसा, इसलिए हमने उसका नाम श्रुत ज्ञान रखा कि सुनकर किया जाए। अब अपने के द्वादश अंग श्रुत, बारह अंग हो गए ना श्रुत के, तो वो कहते वो श्रुत ज्ञान है, हमने उससे जाना और केवल ही भगवान ने केवल ज्ञान से जाना। तो मालूम क्या कह रहे हैं इस गाथा में कि क्या फर्क है, दोनों ने ज्ञान ही से तो जाना है, कि वो श्रुत तो लग गया ना बीच में कि वो तो उपाधि थी उसकी उपेक्षा कर दो ना। इसमें तो इतने कठोर शब्द लिखे हैं वो मैं बोले नहीं जाते हैं, पढ़ के ही सुनाऊंगा। श्रुत की उपेक्षा करने के लिए जो शब्द लिखे हैं वो बहुत कठोर लिखे हैं कि श्रुत ज्ञान को छोड़ो ना, क्या करना तुम्हें श्रुत ज्ञान का, श्रुत की उपेक्षा कर दो। अब मैं खोजूं तो समय लगेगा। हाँ सर, अब यदि उपाधि होने से सूत्र का आदर ना किया जाए, सूत्र को आदर नहीं करने की कह रहे दादा, आदर नहीं कर रहा सूत्र को, यहां कहते आदर करो, कुछ लोग तो कहते कि नहीं ये दिनवाणी ऐसी मत रखो, ऐसी रखो ऐसी नाभि से ऊपर रहना चाहिए, तुम्हारी नाभि से नाप नाप के देखो। हमने इस बारे में ज्यादा अभी कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं ये कहता हूं, वे कहते उसकी उपेक्षा करके देखो ना थोड़ा, कहां गया ना, आदर ना किया जाए तो सूत्र ज्ञप्ति में ज्ञप्ति ही तो शेष रह जाती है, वह ज्ञप्ति केवली और श्रुत केवली के आत्मान भवन में समान ही है। इसलिए ज्ञान में श्रुतोपाधिकृत भेद नहीं है। अब तुम ज्ञान में और केवल ज्ञान में इस श्रुत की उपाधि डाल के बीच में भेद काय को खड़ा करते हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, ब्रह्म के पास ज्ञान है, वो उसे जाने तुम इसे जानो, काम तो जानने का करना है कि नहीं नहीं आत्मा के जानने का करना, तो कोई बात नहीं, उससे आत्मा जानो इससे आत्मा जानो, कि जान सकते हैं, हाँ जान सकते हैं, तभी तो हम बात कह रहे हैं। पद्मधारी देव यहां तक कहते हैं हम खड़े हैं ना, भगवान केवली नहीं है, केवली नहीं है, केवली होते तो हम जान ही लेते कि हम खड़े हैं ना, हम बता रहे हैं ना तुम्हारे लिए, तुम उनको क्यों रो रहे हो, गंभीरता से विचार करने की बात है। भगवान महावीर से लेकर और पूज्य गुरुदेव तक जो भी हमें आचार्य परंपरा प्राप्त हुई है उसमें एक एक व्यक्ति की महिमा कितनी है जिसे हम पार वर्णन नहीं कर सकते। ये तो हमारी वो है कि हम कभी एक की कभी एक की थोड़े गीत गा लेते हैं, लेकिन महिमा तो सबकी ही बराबर है। भगवान महावीर से लेकर जिनने आज तक हमारे पास तक आई है उसमें हरेक की महिमा महान है, कोई की कम नहीं है। मेरे कहने कभी कभी हम इस बात पर ही लड़ते, हम टोटा मल के गीत गाते रहते, गुरुदेव का नाम ही नहीं लेते, फिर हम गुरुदेव का नाम लेते रहते, टोटा मल जी भी तो विद्वान थे, उनका तो नाम ही नहीं लेता, शरण माना थी तुम्हारे जयपुर के और तुम नाम नहीं लेते हो, क्या बताएं क्यों, किसका नाम ले और किसका नाम नहीं है, क्योंकि सभी का अनंत उपकार है। फिर के थोड़ी देर को जरा छोड़ दो ये उपकार को, उपकार कहते क्या कह रहे, वो जो ज्ञान बचा वो तो समान है, उससे तेरा काम हो जाएगा। श्रुतिकृत उपाधि छोड़ दो तो श्रुतिकृत उपाधि में जो सहयोगी के रूप में आएंगे वे सभी छूटेंगे ना। वो दोनों ही लिखा, वो मुझे एक एक शब्द मैंने पढ़ा है। क्या लिखा? अनुभव केवली के लिए भी लिखा है, श्रुतिकेवली के लिए भी लिखा है। तो केवली का तुम्हारे जैसा अनुभव होगा, तो अनुभव का कितना बड़ा पैमाना है उसको आप समझो। क्योंकि केवल ज्ञान हो गया, लोकालोक को जान रहे, अपने आत्मा को जान रहे, फिर भी लिख रहे कि भी अपने अनुभव से जान रहे। तो तुमको ये अलग टाइप का अनुभव तुमने अभी यहां दिमाग में घुसा लिया हो तो फिर केवली पे भी घटित होना चाहिए ना, वो ऐसा अनुभव होना चाहिए। अनुभव से जानते हैं लिखा ना, ये कह रहे आप देखो अनुभव जानते हैं। अरे देख देख, मैं तो श्रद्धा निरंतर करता ही हूं, लेकिन जब मैं जिनवाणी का प्रचन करता हूं तो मैं नहीं लिखा हो तो भी मैं पढ़ के आता हूं और जाकर के फिर एक बार पढ़ता हूं। बाद में काहे को पढ़ते हो अशोक भाई? मैं धर्म के 10 लक्षण है ना किताब, तो मैंने लिखी है और मैंने कम से कम 60 बार तो प्रवचन कर ही लिए होंगे। 60 साल से कर रहा हूं मैं प्रवचन। क्यों? पॉल्यूशन में तो कभी छुट्टी मिली नहीं। फिर भी जब मैं प्रवचन करने जाता हूं तब वो लेख पढ़ के जाता हूं। अपने विद्यार्थियों से कहता हूं, असली अच्छा प्रोफेसर वो है जो पढ़ के आए, जो बिना पढ़े आके मुझे तो सब आता है वो नहीं। और फिर वापिस जाके क्यों पढ़ना है? इसलिए कि मैं देखता हूं कि मुझे ये समझाना था तो मैं पूरा समझा पाया कि नहीं, कि कुछ छूट गया। और यदि उसमें से कोई तर्क छूट जाता है तो उसे मैं दूसरे दिन के धर्म में एडजस्ट करता हूं। जो उत्तम क्षमा का छूट गया तो उत्तम मार्दव वाले दिन में वो उत्तम मार्दव के साथ में सेट करूंगा, ऐसे करूंगा जैसे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, लेकिन मैं वो बात बता दूंगा। क्या ये गुण है, ये दोष नहीं है? कह रहे तुमने बता दिया कि किताब पढ़ पढ़ के आते हैं जो बोल देते हैं प्रश्न के, ये क्वालिटी है, ये डिसक्वालिटी नहीं है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री जब हम जिस बात पर प्रश्न करते थे तो उस दिन घर पे भी वे, मतलब 3 बजे प्रश्न करना है तो 11 बजे भी वही पढ़ रहे, पढ़ते पढ़ते फिर जब आए तो आते आते भी वही पढ़े। और फिर जब वो प्रवचन की गद्दी पे बैठ गए आधे घंटा पहले आके, तो वे वहां भी वो ही पढ़ रहे, निकाल के रख लिया है ना। बिल्कुल बता दे, भूल भूल जाते होंगे तो बार बार देख देख के मैं बोलते हैं। फिर उनका प्रवचन कैसा होता था मालूम? थोड़ी बता दूं मैं। गजब थी, लेकिन अभी एक शब्द तो बोला नहीं है। क्या कहते हो गया? कहां से आ गया? अरे कुछ बोलो, बताओ 10-5 मिनट और फिर आहा करो तो वहां अच्छा लगता है। आहा करना हमें नहीं आता क्या? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उनके आहा क्या समझो तो, किस बात पे आहा कर रहे हैं? किस बात पे ताली पीट रहे? तुम्हारे लिए तो अभी शुरू होना है और उनका तो घंटों से शुरू है अंदर में वही मनन पॉइंट, समझ गए ना? और उस मनन में उस पॉइंट पे कहीं वो आए कि जहां उनको आहा आता है, तो उन्होंने तो बस वो समझो वाणी शुरू करी और आहा से शुरू कर दिया। आहा गजब से आचार्य दिगंबर, आचार्य क्या दिगंबर, पंडितों ने भी गजब किया है। पंडितों की ये बात गीत गाने लगे और फिर अपने बात करने लगे, करते थे कि नहीं ऐसा? यानी ये आभीषण ज्ञानोपयोग का काम है, समझे ना? आभीषण ज्ञानोपयोग का काम है तब कुछ हाथ लगता है, ऐसे एक कोरे पढ़ लेने से कुछ नहीं होता। सुनो जी, हम जब लिखते हैं तो वहां लिखते लिखते ऑफिस में से घर आ जाते हैं तो खाना खाते वक्त भी दिमाग में वही चलता रहता है, फिर आगे जाकर के फिर वहीं से बैठ के उसी पंक्ति से फिर वहीं से लिखना शुरू कर देते हैं। यदि वो कंटिन्यूटी कायम नहीं रहे तो लिख सकते हैं? पादनी जी हमसे यही कहते थे कि आप कहेंगे जब क्या आदमी हमको जिसमें प्रवचन करना हो तो 3 घंटा पहले फ्री चाहिए, हम कुछ ना कुछ पढ़ें, और आप एकदम ऑफिस में काम करते उठते हो तो जाके गद्दी में बैठ जाते हो, प्रवचन शुरू हो जाता है, फिर आगे फिर काम शुरू हो जाता है वहीं के वहीं जहां से छोड़ा था आपने। यदि वो कंटिन्यूटी रहती है, आपको हम जितना पढ़ते देखते हैं उतना ही नहीं पढ़ रहे, हम दूसरा कुछ नहीं कर रहे ना, तुमने 2 काम बताए थे वो हम भूल गए ना, क्यों? तो उनको जगह नहीं मिली यहां रखने के लिए। ऐसे स्वाध्याय करो, जिनवाणी अपनी मां है, सर्वज भगवान की वाणी है, तो कहते क्या फर्क है तुझमें और केवली में, लेकिन श्रुत ज्ञान में और श्रुत केवली में क्या फर्क है? श्रुत की उपाधि लग गई तेरे को, उपाधि की तुम उपेक्षा कर ले, कहते छोड़ तो सकता नहीं, अभी तो केवल ज्ञान हो जाए मुझे, श्रुत ज्ञान नहीं रहे ऐसा तो हो नहीं सकता, तो हम तुम उसकी उपेक्षा करना माने महिमा दिमाग में थोड़ी कम कर दे। तेरा जो ज्ञान है वो आत्मा के जानने में वैसे ही काम करेगा जैसा केवल ज्ञानी का करता है, और जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जैसा आत्मा आया है तेरे शुद्ध ज्ञान के ज्ञान में भी वैसे ही आत्मा आएगा। हाँ, शुद्ध ज्ञान समझे भावाई अनुभव अनुभव सब शुद्ध ज्ञान में आ जाता है। शुद्ध ज्ञान कहा चाहे आनंद गुण में कहा चाहे आनंद का वेदन भी साथ में है, जब जैसी जो अपेक्षा आएगी तब तैसी वो अपेक्षा लग जाएगी। तो अभी क्या बात कहते, देखो पढ़े अपन कौन से 34वीं गाथा पढ़नी है ना, पढ़ो सुत्तम जिनोपदत्थम वो देखो सुत्तम जिनोपदत्थम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा गया सूत्र, जिनोपदिठम सूत्रम का ये सूत्र बोलते हैं तत्वार्थ सूत्र, अपने तत्वार्थ सूत्र और समय सार में तो गाथा है, सूत्र नहीं है ना, तत्वार्थ सूत्र में सूत्र है, परीक्षामुख सूत्र में सूत्र है, लघु सिद्धांत कौमुदी में सूत्र है, और समय सार में गाथाएं हैं, क्यों तत्ग्रंथ समाचार में श्लोक है, ऐसा ऐसा अलग अलग है, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते अपन समय सार में देखो अथ गाथा सूत्र अवतरते। अब गाथा सूत्र का अवतार होता है, लिखा क्या नहीं लिखा, तो गाथाएं लिखी वे भी सूत्र हैं, संक्षिप्त कथन माने सूत्र, चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो सब सूत्र कहलाते हैं। और वो कहते हैं जिनोपदिठम जिनेन्द्र भगवान की वाणी में जो आया वो सब सूत्र है, लिखा देखो सुत्तम जिनोपदिठम पौगल दब्बप्पगे ही वेणी वे पुद्गल द्रव्य से बना है, वो वे वचन बने हैं जो अनंत भगवान के, वे पुद्गल द्रव्य से बने हैं, पुद्गल द्रव्य की रचना है, ये जो शास्त्र में लिखा है ये पुद्गल द्रव्य की रचना है ना, लेकिन जो भगवान ने साक्षात बोले वो तो उनने साक्षात बोले हैं ना, उन्हें भी पुद्गल कहोगे, दोनों ही पुद्गल हैं। अच्छा ये कौन से पुद्गल हैं, वे कौन से पुद्गल हैं, वो भाषा वर्णना के पुद्गल हैं, वो जो आहार वर्णना के पुद्गल हैं, ये जो है ना ये आहार वर्णना का बना हुआ है कागज सूत्र से आई, बदल गए कहोगे बरगना तो कोई पुद्गल ही की है ना। सुत्तम जिनोपदिठम पुद्गल दब्बप गेहि बयणेहि पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा, सर्वक भगवान के द्वारा कहे गए पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के द्वारा तम जानयाहि नाणम जो जानना होता है उसको ज्ञान सुत्तस्य सुत्त ज्ञान कहते हैं। सुत्तस्य जानया भरिया कौन कहते हैं भैया, कौन कहते हैं? सूत्र के जानने वाले कहते हैं सुत्तस्य जानया भरिया। रत्न सत्यार में एक श्लोक आता है, दूसरा तीसरा श्लोक होगा उसमें, तो बहुत ऐसे ही सब प्रयोग है कि अभी याद नहीं आ रहा कि वो के भगवान कहते हैं क्या कहते हैं, तो वो कहते इसके जानने वाले भगवान इसको कहते हैं ऐसा क्या, क्या? हाँ बोलो बोलो दुकान सर्वेश्वर बिलू धर्मम धर्म कहते हैं कौन, धर्मेश्वरा धर्म के जानकार धर्म के ईश्वर इसे धर्म कहते हैं। धर्मम धर्मेश्वरा बिलू धर्म के जानकार धर्म कहते हैं। ऐसे यहां ये कह रहे हैं कि सुत्तस्य जानया सूत के जानकार उसे सूत्र कहते हैं, जो पुद्गल का बना हुआ है। जिन बर कथित पुद्गल वचन ही ये छंद है और मैं इसे गद्य के रूप में पढ़ता हूं, ध्यान से आप देखो। जिनवर कथित पुद्गल वचन ही सूत्र, उसकी ज्ञप्ति ही है ज्ञान, उसको केवली जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहें। अंतर आया समझ, मतलब उसे आपको पढ़ने से पूरा अर्थ खुल जाएगा, माने कहां रुकना कहां वो वाक्य पूरा बनेगा। फिर ध्यान से दो, जब बनाते हैं तभी ऐसा होता है। जिनवर कथित पुद्गल वचन की वचन ही सूत्र, सूत्र कोमा समझ लो फर्स्ट ऑफ, क्या जिनवर कथित पुद्गल के वचन है वे ही सूत्र हैं, और उसकी ज्ञप्ति उन सूत्रों का जानना ही ज्ञान है, मान श्रुत ज्ञान है, और उसको केवली भगवान जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहते हैं। तो कौन केवली भगवान जिन सूत्र की ज्ञप्ति कहते हैं। गद्य भी है पद गद्य जैसा पद, ये जो विशेषता है छंदों में ये पंचाध्यायी में पाई जाती है। उनकी संस्कृत इतनी अच्छी है कि वो गद्य जैसा पद बोलते चले जाते हैं, एक दस श्लोक का अर्थ एक साथ करते जाओ तो बिल्कुल जैसे गद्य में बोल रहे हैं ऐसे बोलते जाओ, चाहे गद्य बोलो चाहे पद्य बोलो, पद्य भी है वो और गद्य जैसा है। ये बहुत काव्य की विशेषताएं हैं, इनमें आप देखोगे कैसा इसमें कि एक शब्द यहां से वहां हटा दो, हटा कर दो कैसे हट सकता है, सब अर्थ बदल जाएगा, हट ही नहीं सकता है। अब देखिए पुद्गल द्रव्यात्मक वचनों के रूप में जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए वस्तु स्वरूप के ज्ञान को सूत्र की ज्ञप्ति अर्थात स्तुत ज्ञान कहा गया है, जिसमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी निमित्त है, ऐसा जो ज्ञान है आत्मा का ज्ञान हो क्षेत्रों का ज्ञान हो उसको श्रुत ज्ञान कहते हैं, और सुनने के कारण भी उसे श्रोतेन्द्रीय विषयत्वात् उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं, श्रोतेन्द्रीय का विषय होने से भी उसे श्रुत ज्ञान कहते हैं। तो ये जो श्रुत ज्ञान की परंपरा निमित्त के रूप में यदि जिनागम में किसी को भी रंचमात्र महत्व है वो दिया गया है तो वो सिर्फ देशमालब्धि को, क्या कहना चाहता हूं मैं आप सुन लो, और निमित्त की कोई उपयोगिता नहीं है। अब मैं यात्रा में दान में पूजा में पाठ में एक एक को मैं नहीं गिनाऊंगा, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो पांच लब्धियां होती हैं उनमें एक देशना लब्धि है और वो अनिवार्य है, वो निमित्त अनिवार्य है। निमित्त एक ही चीज और बताओ मुझे ऐसा कोई निमित्त जो आपके सम्मदर्शन, हमें आत्मा का अनुभव करना है ना, सम्मदर्शन चाहिए जिसमें और कोई निमित्त की आवश्यकता हो और जिसके बिना नहीं हो सकता वो बताओ। देशना वो जो करमरम का उदय वगैरह छह छह है ना, वो तो हमें तो ज्ञान में आता नहीं है, हम तो शास्त्र में पढ़ के जानते हैं। अब हमारे कौन से कर्म का उदय कैसा आ रहा है, उदीर्ण हो रही क्या हो रही, हमें कुछ पता नहीं है। माने वो हमारे काम का कोई ऐसा निमित्त नहीं है, वो तो निमित्त कहा है तो हमने शास्त्र में पढ़ के जान लिया। लेकिन ये देशना में तो हम इन्वॉल्व होते हैं ना, हम समोषण में जाते हैं, आप लोग अपने गांव छोड़ के आए हैं, यहां पर बैठे हैं, सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, यानी ऐसा सक्रिय निमित्त जिसे अपन बोलते हैं, जिसे हम करें क्या करें, ऐसा हमें आत्मा का कल्याण करना है, हमें आत्मा समझना है, क्या करें क्या करें बोलो। कि आत्मा समझना है ना, आत्मा समझना है तुमने नक्की तो कर लिया, क्या करें, आत्मा को समझो। उत्तर समझ में आया कि नहीं आया, आप खुद तो उत्तर बना के लाए हो कि हमें आत्मा समझना है। अब पंडित जी आप बताओ हम क्या करें। तो तुम ही तो कह रहे हो कि हमें आत्मा समझना है, तो आप बताओ ना क्या करेंगे, आत्मा को समझो और क्या करो। वही उत्तर है ना, जो आपका प्रश्न है वही उत्तर है कि आत्मा समझना है तो आत्मा समझो। अब और पीछे पड़ोगे तुम कि नहीं नहीं कैसे समझे, क्या समझे, कोई समझा कौन समझा, तो फिर कहेंगे देव साध गुरु भगवान की दिव्य ध्वनि, फिर और बातें आएंगी है? आपके समझे ना, और बातें कब आएंगी, ये सब देवशास्त्र गुरु खड़े कैसे हो जाते हैं, जैसे खड़े हो गए कि देश ना लब्धि चाहिए तो वो सच्चा देव होगा, तो देव तो अभी है ही नहीं है, तो कहते उनकी वाणी लिखी हुई मौजूद है, तो वाणी आ गई कि वाणी किसने लिखी, कि आचार्यों ने, क्योंकि आचार्य तो बेबी तो चले गए, हम क्या करें, ये जान दो, अभी उनकी वाणी तो मौजूद है कि हमें वो भाषा आती ही नहीं है, तो उसका संस्कृत कर देंगे। वे आचार्य दूसरे खड़े हैं अमृतचंद्र, कि वो हमें संस्कृत भी नहीं आती है, तो ये हिंदी कर देंगे, कि हमें हिंदी भी नहीं आती है, तो जो तुम्हारे भैया बगल में बैठे हैं ये तुम्हें पढ़ के सुना के समझा देंगे। वो पूरी तुम जितने जितने अड़ंगे खड़े करते जाओगे उतने ही उतने एक एक और निमित्त तुम्हारे माथे पे मरता जाएगा। और मुक्ति के बारे में क्या कि कहां पर जरूरत है बताओ, और तो सब विघ्न ही विघ्न है। इसीलिए भगवान की दिव्य ध्वनि को इतना महत्व मिला, आचार्यों के बोधकों इतनी उत्कृष्ट कोटि की वीतरागता हो गई कि जो छठवें सातवें गुणस्थान में पहुंच गए, जहां तक उसमें जाकर के आगे श्रेणी में चढ़ सकते हैं, इतने उत्कृष्ट स्थिति में वहां से लौट के आकर वो ये लिखने का ये बोलने का विकल्प आया, यदि ये नहीं होता तो देशना लब्धि खत्म हो जाती, देशना लब्धि उपलब्ध है। जितनी आवश्यक जो चीज है उसकी उपस्थिति उतनी ही सस्ती होनी चाहिए। नहीं समझो, अपने को जीवन के लिए खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, सही है ना, तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। और कपड़े हों तो पहन लेंगे, नहीं तो नहीं पहनेंगे, कम पहन लेंगे, क्यों, कपड़े भी तो जरूरी है ना, रोटी कपड़ा और मकान, मकान भी तो जरूरी है, नहीं तो छत के नीचे कर लेंगे। लेकिन अब ये तीन चीजें जरूरी होंगी, कौन, खाना पीना और ना। अब खाना कैसा अनिवार्य है कि दिन में एक बार अच्छी तरह शांति से मिल जाए तो 24 घंटे को निश्चिंत है, तो 24 घंटे में एक बार की जरूरत है। हमारे मुनिराज ले लेते हैं तो शांति से 100-100 वर्ष की उम्र तक जीते हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन पानी, पानी तो दिन में 2-3 दफे तो चाहिए, क्यों, यानी खाने से ज्यादा जरूरी पानी है। तो जो खाने की कीमत है बाजार में उससे पानी की कीमत कम है, अभी हो गई, पहले तो थी नहीं, पानी मुफ्त में ही मिलता था। क्यों? कोई किसी को पानी पिलाए तो उसके पैसा नहीं लेता था, अब तो लेने लग गए। रेलवे स्टेशन पे वो गिलासों में पानी बिकता और सांस के प्रति समय चाहिए, एक घंटा भी सांस नहीं ले तो नहीं चलेगा। तो सांस हवा बिल्कुल बिना कीमत की वो कहां उपलब्ध है? जहां तुम्हारी नाक है वहां। वो ही नहीं कहता है कि तुम्हारा जहां नाक है वहां हवा, वहां पानी नहीं है, वहां खाना नहीं है, खाना रसोई में मिलेगा, पानी अपनी जगह मिलेगा, लेकिन हवा तुम उठा के लाके लेकर के ले लो ऐसा नहीं। जहां तुम्हारी नाक है वहां हवा होनी चाहिए। तो जहां हवा इतनी जरूरी है ना जीवन के लिए, तो आत्मा कि जहां तुम हो वहां नहीं, वही वही असली जीवन है ना। आत्मा के जीवन के लिए आत्मा की जरूरत है, निरंतर। अब वो इसलिए और कुछ नहीं है, बस अपने यहां दो ही बात है कि एक वो आत्मा और एक परमात्मा। आत्मा तो अपना आत्मा है ही, तो अपन है ही, और यदि उसमें नहीं रहा जाए तो परमात्मा के घर चले जाना। मां परमात्मा का घर कौन सा है? ये मंदिर ही नहीं, बल्कि वो उनकी वाणी, उनकी जो है वो भी आप पढ़ रहे हो तो परमात्मा के घर ही जाना हुआ ना। उसी में अपनी चर्चा का विषय बना रहे हो, सोच रहे हो, मंथन कर रहे हो, वो सब चीज आगे बढ़े, वो परमात्मा हो, फिर लौट के आत्मा में आ जाओ। सुख से शुद्ध से सुख, शुद्ध से सुख, शुद्ध में गए तो आत्मा में गए, और शुभ में कौन सा सुख? सिर्फ देशना लब्धी वाला। सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ, लिखो, लिखाओ। टोडा मजी ने लिखा ना सर कि कितने अंग हैं शुद्ध साधना के, वो सारे अपने जीवन में उपयोग करो कि दूसरों को पढ़ाएं। हाँ, मैं जरूर पढ़ाऊं, पहले खुद पढ़ो। कहने अब हमारा तो निकल गया, अब हम तो नहीं पढ़ पाए, तो हमारी तो अगले हमें देखेंगे, लेकिन हम दूसरों को जरूर पढ़ाएंगे। क्या ये काला अक्षर भैंस बराबर है, वही सारी दूसरों को पढ़ाएंगे। तुम्हें तो पंडित जी पता नहीं है, वही पढ़ाते हैं, हम विद्यालय खोल देंगे, पढ़ेंगे सब विद्यार्थी। तो मैंने तुम पढ़ाओगे कि हम पढ़ाएंगे? क्यों बोला? तुम पढ़ाओगे कि हम पढ़ाएंगे? कि पढ़ाओगे तो तुम्हें, लेकिन नाम हमारा ही होगा। क्यों? सोचो, इंग्लैंड में एक यूनिवर्सिटी है, नाम है ना कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। उसका नाम है कैम्ब्रिज कैसे पड़ा, इसकी कहानी सुनो। वहां एक रेस्टोरेंट था, उस रेस्टोरेंट में एक डायरी रखी रहती थी, और डायरी में ये थी कि जो भी आए वहां चाय पानी पिए और उसे कुछ लिखना हो तो उस डायरी में लिख दे, और नहीं तो वो डायरी पढ़ना चाहे तो पढ़े दूसरों का लिखा हुआ। तो एक आदमी ने उसमें लिख दिया कि मेरे पास यदि 100 पाउंड होते तो मैं इसकी 100 किताबें खरीदता और 100 घर में जाता, उन्हें दे के आता और उनसे कहता पढ़ना, 3 दिन बाद आऊंगा मैं ले जाऊंगा, फिर भी किताबें मैं लेकर दूसरे के घर दे के आता। ऐसा उसने लिखा। तो एक आदमी आया, वो चार दिन उसने पढ़ा, फिर जी भाई बड़ा दिमाग का आदमी है, इसे 100 पाउंड मिल जाए इसी बात पर, 100 पाउंड नहीं है और जी इतना बड़ा काम करने को तैयार है ज्ञान के प्रचार में। तो उसने नीचे लिख दिया कि भाई साहब आपके पास यदि 10,000 पाउंड होते तो क्या करते? क्या लिख दिया? आपके पास यदि 10,000 पाउंड होते तो क्या करते? उसने आगे पढ़ा, मैंने कहा ये कौन आदमी है, होगा कोई क्योंकि मन में आया होगा। तो उसने फटाफट दूसरी योजना बनाई, 10,000 पाउंड में क्या हो सकता है ज्ञान के प्रचार में, परमात्मा सुनना, दूसरी योजना बनाई। बना करके और उस डायरी में लिख दी कि मैं ऐसा ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, पूरे गांव को शिक्षित कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर वो आया, उसने पढ़ा तो उसने कहा आपके पास 1 अरब पौंड होते तो क्या करते, क्या लिखा। तो पहले वाले ने पढ़ा कि पागल है, पागल है, हमको पागल समझता, हमने जो अपनी बात लिखी तो हमको ये बोलता है क्या करता है। तो उसने कहा भाई साहब उनसे हमें मिला दो, ये कौन है, उनसे मिला है। तो उनने कहा कि आप जी क्या करें, एक अरब पौंड, कि हाँ 1 अरब पौंड होते नहीं है क्या, हाँ बोले बोलो तुम क्या कर रहे, कि मुझे 8 दिन लगेंगे, 8 दिन। तो 8 दिन दिए उसने, वो 8 दिन में उसने एक यूनिवर्सिटी का पूरा प्लान तैयार किया, बिल्डिंग बनाने से लेकर पढ़ाने लिखाने से लेकर सब सब तैयार किया। और 8 दिन बाद जाकर के उसने वहां पेश कर दिया उसके सामने, वो भी आया, दोनों मिले, क्या कि मैं ये करूंगा, 1 अरब डॉलर होंगे तो, पौंड होंगे तो। तो उसने उसी वक्त निकाला चेकबुक और 1 अरब पौंड का चेक लिख दिया, लो जाओ और करो। सुनी कभी कहानी ऐसी, नकली नहीं है, असली है। फिर यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई, अब नाम रखने का मौका आया कि इसका नाम क्या रखा जाए, क्या बहुत वाद विवाद चला। वो कहता था कि आपने सारा खर्चा किया है, आपने पैसा दिया है तब ये काम हुआ है, नहीं तो ये काम नहीं हो सकता था, इसलिए इसका नाम आपके नाम पे रखा जाए। और वो ये कहता था कि मेरा पैसा तो घर में ढेर सारा पड़ा था मिट्टी जैसा, और तुम ये योजना नहीं बनाते, तुम्हारे दिमाग में ये योजना नहीं आती और तुम उसको कार्यान्वयन नहीं करते तो वो ऐसे ही पड़ा रहता, इसलिए तुम्हारे नाम पर यूनिवर्सिटी रखी जाए। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि वो कैम्ब्रिज नाम किसका था, उस सेठ का कि उस आदमी का। समझ में आया ना, उसका नाम था किसका, योजना बनाने वाले का, बनाने वाले का नाम था क्या, कि उसके नाम पर वो यूनिवर्सिटी बनी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पैसा तो ढेर सारा सब जगह पड़ा है, गवर्नमेंटों के पास भी पड़ा है और हम व्यापारियों के पास भी पड़ा है, जहां देखो जहां निकलता है, उसमें उसका क्या है, वो उसको कैसे उपयोग करना है। उस दो एक एक ही है ना मोक्ष मार्ग में, धर्म में क्या है ये बोलो, क्या करना है बोलो अशोक, ये देशना लब्धि उपलब्ध कराना ही है ना। तो देशना लब्धि उपलब्ध कराने के अलावा कोई व्यवहार धर्म नहीं है। निश्चय धर्म तो आत्मा का अनुभव और व्यवहार धर्म देशना लब्धि की उपलब्धि। समझ में आया ना, अपनी जिनवाणी में कहीं कोई कमी नहीं है। जब दान की चर्चा करी तो उन्होंने 4 दान बताए, तो पहले ज्ञान दान लिखा, आहार दान लिखा, क्यों औषध दान लिखा, अभय दान लिखा, और पैसा दान लिखा ही नहीं कि उसमें किसी में गर्वित कर लेना, इन्हीं में से किसी में गर्वित कर लेना, तुम जान लेना। बोलो क्या है, तो अपने आचार्यों ने कोई कसर छोड़ी, अरहंत भगवान की दिव्य ध्वनि खिड़ती है और समोषण कितना बढ़िया बनाया, ऐसा बनाया किसी ने, कितने समोषण बन गए, कैसा बनाया, स्वधर्म इंद्र ने बनाया था कि नहीं, सारी सभा जाकर के बैठी थी, तो वह इंद्र सभा थी कि तीर्थंकर की सभा थी, वो समोषण किसकी सभा है, मनाई तो इंद्र ने, इंद्र सवाल तुम्हारी बनाते हैं तुम स्टेज पे नाटक माटक करते हो ना गाय में पंच कल्याण में, इतनी बढ़िया इंद्र सवाल, इतनी बढ़िया इंद्र सवाल, तुम इंद्र सवाल जानते हो बीच में कौन बैठा है सौधर्म इंद्र, और कोने में कौन बैठा है सूरमा इंद्र, क्यों? तो पहले सुरख के इंद्र में सूरमा उस कोने में आगे बैठेगा, ऐसा ही हो गया ना कि विद्वानों की सभा में एक मूर्ख को बैठा दिया अध्यक्ष की कुर्सी पर, और सबसे अंत में चाणक्य जैसे कोई विद्वान हुए उनको जगह दे दी, ऐसी होती है इंद्र सभा, ये इंद्रों की सभा है, ऐसे उनके उनका स्थान किसका कहां होना चाहिए, सौधर्मी से ईशान बड़ा है कि छोटा, ईशान से सनत कुमार अच्युत अरण अच्युत सोलह सड़क का इंद्र कहां किसी उनका किसी पता ही नहीं, सब बन गए कई दफे बन गए बन देख आए, कई दफे इंद्र सभाएं देख ली और फिर देख रही, फिर अब तो विधान में भी इंद्र सभा और अब तो शिविर में भी इंद्र सभा, कभी कभी हमारे प्रवचन की जगह हम मर जाएंगे तो इंद्र सभा होगी यहां, नाराज मत होना पंडित तो तुम्हारी कुछ बात नहीं है सर, तुम क्या करते हो, सब कर रहा है दावा देश कर रहा है, मुझसे तो बाबू भाई ने कहा था, मैंने ये नैरोबी में सुनाया था सब, तो बाबू भाई ने कहा था पंडित जी आप लिख दो एक पंच कल्याण है और किताब हम वैसा ही कराएंगे गारंटी से, मैंने कहा नहीं करा पाओगे हमारे साथ तुम भी जाओगे क्योंकि समाज में इतनी गहराई से अंधकार छाया है कोई नहीं सुनेगा, सब इतने स्पष्ट तर्क हैं युक्तियां हैं सब बातें हैं लेकिन कोई नहीं सुनेगा, इसलिए तुम तो चुपचाप शांति से चलने दो जो चल रहा है, मैं बंद कर देता हूं आप घबराओ मुझे, मैं कब नहीं बढ़ाऊंगा मैं ज्यादा, लेकिन मैंने बताया ना नमूना सिर्फ देश ना लब्धि गोष्ठी होती है जो अपन चार आदमी बैठ के स्वाध्याय करते हैं वो है बस धर्म, व्यवहार धर्म वो है, वहां से लेके समोषण तक, समोषण से लेकर दो आदमी बैठ के बातचीत करते हैं आपस में, एक आदमी बैठ के चिंतन करता है वो तो सामायिक में चला जाएगा, वो तो असली धर्म में चला जाएगा, तो ये देशना लब्धि है, पर ये निमित्त के रूप में देशना और उपादान के रूप में अपना भगवान आत्मा, बस वो श्रुति ज्ञान, एक ज्ञान एक श्रुति ज्ञान, ये दो ही धर्म है, निश्चय धर्म भी और व्यवहार धर्म।